यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परवृजाकाचार्य अष्टोर सड़सठ श्री श्रीमती श्रीवन ग्रह श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थपकाचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरिस ऑल ग्लोरिस ऑल ग्लोरिस्ट गुरु एंड गौरांग श्ल प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानिनाथमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाखिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपांगनामयं ददापि स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथांबितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय तीसरा श्लोक संख्या नंबर 22 इनका शीर्षक है सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। तो कृपा करके इन श्लोकों को मेरे पीछे दोहराइएगा। एवं ब्रुवानम् पितरम् स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच ता जामाता त्वा एषः भृगुनन्दनः एवं ब्रुवानं पितरं एवं ब्रुवानं पितरं संयमाना शुचिस्मिता स्मयमाना शुचिस्मिता वाचा तात जन्माता वाचा तात जन्माता त्वैषा भृगुनन्दना त्वैषा भृगुनन्दना एवं ब्रुवाणं पितरं संयमाना शुचिस्मिता स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता उवाच तात जामाता त्वैषा भृगुनन्दना त्वैषा भृगुनन्दना एवं ब्रुवाणं पितरं एवं ब्रुवाणं पितरं संयमाना शुचिस्मिता स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच्या ताज्जामाता उवाच ताज्जामाता त्वैषा भृगुनन्दना त्वैषा भृगुनन्दना एवम् माताजी शब्दार्थ इस प्रकार हैं, एवं इस प्रकार ब्रुवानम बातें करते तथा फटकारते हुए पितरम अपने पिता से स्मयमाना मुस्काती हुई क्योंकि सती थी सुचिस्मिता हस्ती हुई उवाच बोली तत हे पिता तात तात हे पिता दामाता दामात तव तुम्हारा एषः यह तरुण भृगुनंदना चवन मुनि ही है अन्य कोई नहीं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार कर सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा हे पिता मेरे बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न चवन मुनि है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यद्यपि पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था उसने दूसरे पति स्वीकार लिया है किंतु पुत्री जान रही थी कि वह पूर्णतया ईमानदार तथा सती है इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति चवन मुनि ही बदल कर तरुण पुरुष बन गया है तो उसे अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसलिए वह अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही थी। तो एक बार अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार कर सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा हे पिता मेरी बगल में बैठा ये तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न चवन मुनि है। जय श्री श्री राधा सुभद्राम। तो एवं यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि आगे की क्या घटना हुई। तो हमने इसके पिछले क्लासों में हमने श्रवण किया है कि किस प्रकार चवन मुनि वो अपनी वृद्ध अवस्था को छोड़कर अब पुनः यौवन बन गया। तो उन्होंने अश्विनी कुमार के सहारे उन्होंने अपने वृद्ध शरीर को त्याग कर वो एक ऐसे सरोवर में डुबकी लगाए जहां पर जिस सरोवर में जो डुबकी लगाने से सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वैसे सरोवर में डुबकी लगाने मात्र से चवन मुनि जो कि वृद्ध अवस्था से वापस यौवन अवस्था में पहुंच गए और जब यौवन अवस्था को जब प्राप्त किए तब दोनों के पास यहां पर राजा आए थे उनसे यज्ञ हवन कराने के लिए। तो राजा उनसे भेंट करने के लिए जब आए तो सरयती जब उनसे जैसे ही उनके पास आए तो तुरंत ही उस समय उनकी जो कन्या जो थी सुकन्या उन्होंने प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही उन्होंने क्या देखा कि बगल में एक युवक लड़का और ये युवक व्यक्ति चवन मुनि के जैसे पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि चवन मुनि को तो पहले ही सारियाती ने देख लिया था लेकिन अब उन्हें ऐसे लग रहा था कि कोई और है। तो वो सोच रहा था कि किसी और को पति के रूप में मेरी कन्या ने किसी और को पति के रूप में स्वीकार ली है और ऐसे सोचकर वो अब फटकारने लगे अपने ही पुत्री को, तो अपने ही पुत्री को कैसे फटकार रहे हैं, तो इसके पहले एवं, तो एवं यानी कि क्या, इसके पहले के कुछ श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो एवं कैसे उन्होंने फटकारा, तो कहते हैं कि तुमने उन लोक नमस्कृतो मुनि, उस मुनि को जो लोग प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, वैसे मुनि को, लोक नमस्कृतो मुनि, वैसे मुनि को क्या किए, प्रलंबितो, उनको तुमने ठग दिया है। और क्या कहते, विहाय, उसको परित्याग कर मुमुम अधभगम, तुमने एक दूसरे पुरुष को स्वीकार लिया है, दूसरे पुरुष को तुमने पति के रूप में, एक पराय ऐसा व्यक्ति को तुमने स्वीकार लिया जो एक सड़क का सड़क छाप है। और ऐसे तुमने करते हुए क्या किया, तो तुमने हमारे जितने कुल दुषानाम त्व इदम, तुमने हमारे जितने भी कुल हैं उस सारे कुल को नष्ट कर दिया, जो कि तुम ऐसे ऊंचे जो सम्मान देने वाले कुल के घराने में जन्म लेते हुए भी कतम मति, ऐसे मति तुम्हारा कैसे उत्पन्न हो गया, इस प्रकार का ऐसे तुम दूषित विचार कैसे तुम्हारे मन में घुस गया। तो ऐसे जो दूषित विचार आते ही क्या हुआ, क्योंकि इस विचार आते ही तुमने कुल नष्ठानाम, जो हमारा जो कुल का जो वास्तविक जो चरित्र था वो चरित्र को नष्ट कर दिया। तो वैसे जो स्त्रियां जो होती हैं, इस स्त्रियों को एक कुल का एक फाउंडेशन माना जाता है या एक बीज माना जाता है, जिसके आधार पर कुल का सारा यश नाम वगैरह टिका हुआ है। इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता के उन श्लोकों में अर्जुन ने भी इसी तर्क को पेश किया। और अर्जुन ने क्या तर्क को पेश किया कि किस प्रकार अधर्मो विभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, अगर अधर्म फैलने से जब स्त्रिया जब दूषित हो जाएगी, यानी कि स्त्रियों को संरक्षण करने वाला कोई पुरुष नहीं होगा, तो ये स्त्रिया समाज में दूषित होने से क्या होगा, जायते वर्ण शंकरा, केवल ऐसे संतान उत्पन्न होंगे जो कि केवल समाज में कुत्ते बिल्ली की समान केवल लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिसको कोई संस्कार नहीं होगा। तो वैसे समाज में केवल अशांतियां फैलेगी। तो इन श्लोकों में जहां पर भक्ति रसामृत महाराज का एक लेक्चर में सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे महाराज कि किस प्रकार जो स्त्रियां जो होती है समाज की मूल व्यक्ति होती है, जिस पर समाज की शांति टिकी रहती है। तो वैसे स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर निर्भर रहता है पूरा कुल का पूरे कुल के संस्कार, क्योंकि स्त्रियां ही ज्यादा, जो कि माता जो होती है वही माता अपने पुत्रों को संस्कार देती है, और ज्यादा माता ही अपने पुत्र के साथ अपने समय को बिताती है। तो आजकल के समय पर माता के पास भी टाइम नहीं रहने के कारण माता अपने पुत्रों को बेबी सिटिंग में डाल देती है, जहां पर वो केवल वैसे कार्यों को सीखते हैं जो कि अवांछित कार्य सीखते हैं, जिसके कारण वो केवल बड़ा होकर केवल वो पूरे संस्कार को भूलकर वो पशु के जीवन को, पशु के भांति जीवन जीता है बिना कोई आदर सम्मान दिए। तो वैसे होने से क्या होता है कि केवल समाज में उत्पात खड़ा होता है। तो इस तरह जो स्त्रियां जो है वो मूल कुल धर्म का न्यू है या वो बीज है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कुल दुषानाम। इसलिए इस प्रकार यहाँ पर चवन मुनि वो बता रहे हैं कि किस प्रकार वैसे होने से क्या हो रहा है। तो वैसे होने से यहाँ पर कहा गया है कि तुम भी इस प्रकार तुम भी नरक जाओगे और पूरे कुल को नरक लेकर जाओगे। तो ठीक इसी तरह अर्जुन ने भी कहा कि उत्सान कुल धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नर्गे नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। इस तरह अगर स्त्रियां अगर दूषित होती हैं तो क्या होगा, केवल पितरों वंश जो हमारे आने वाले वंश जो होंगे वो पितरों को दान देना बंद करेंगे, पितरों का श्राप लगेगा और मारने वाला और मरने वाला दोनों नरक जाएंगे। तो अंततः गत्वा जब स्त्रियां अगर सती नहीं रहती हैं या स्त्रियां अगर अपने एक पतिव्रता नहीं रहती तो वो अंततः गत्वा उनका गंतव्य नरक है। इस तरह यहां पर एवं एवं इस प्रकार उन्होंने कहा सारयति राजा ने ये शब्द इस प्रकार कहे। किनको कहा? तो अपने पुत्री सुकन्या को। तो ये जो शब्द सारयति ने अपने पुत्री सुकन्या को किसके अनुसार कहा, किसके ऊपर निर्भर होकर कहा? उन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के ऊपर निर्भर होकर कहा। तो जो सारयति का जो प्रमाण जो था वो सरासर गलत था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे गलत होता है, क्योंकि उन्होंने किसी से पूछा नहीं, उन्होंने सीधे अपने पुत्री से पूछा नहीं कि कौन है, उन्होंने सीधा ही अपना अनुमान लगा दिया और वो अनुमान लगाते ही वो गलत हुआ, गलत साबित हुआ और इस प्रकार उनको फटकारा। जबकि इतना फटकारने के बाद भी सुकन्या का एक बहुत सुंदर गुण था और वो क्या था? सुचि स्मिता, स्मयमाना, वो मुस्कुराने लगी। तो अगर कोई गलती नहीं किया है और उसको अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उसे क्रोध आ जाएगा कि मैंने जबकि ऐसे गलती नहीं किया तो भी मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इनकी एक सुंदर गुण दिखाई पड़ रहा है और वो क्या है कि ऐसे समय पर भी, ऐसे विकट स्थिति में भी वो मुस्कुरा रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सुचिस्मिता, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उनके मुस्कान किस प्रकार का सुचि, सुचि यानी कि शुद्ध। तो शुद्ध क्यों कहा गया है? शुद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी पतिव्रता की शक्ति से वो इतनी पवित्र थी कि उन्होंने सुचि स्मिता, उनका जो मुस्कान था वो शुद्ध माना गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह चवन मुनि जो कि अपने कैसे कहाँ से कहाँ पर आ पड़े हैं, किस प्रकार उनका कैसे कैसे जीवन में कैसे परिस्थिति आ गई। तो जैसे ही उनके हृदय में विषय भोग की जब कामना उत्पन्न हुई तो कैसे कैसे स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा। तो इन्हीं पिछले के प्रसंग से लेकर जब मैं कुछ इसमें मनन कर रहा था तो कुछ बात इसमें ऐसे सीख मिली और वो क्या है कि सबसे पहले चवन मुनि, उनके हृदय में जैसे ही विषय भोग की जब कामना उत्पन्न हुई तो तुरंत ही पहले ही उसे अपने लज्जित होना पड़ा और जिससे लज्जित होकर उन्हें एक कन्या को मांगना पड़ा। तो पहला, और दूसरा, जैसे ही कन्या के विषय में जब उन्होंने अपने उस विरक्ति के मार्ग को छोड़कर जब वो इस प्रकार ग्रस्त आश्रम में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो उनके लिए क्या चाहिए? अब फैसिलिटी यानी कि वस्तु चाहिए। तो वस्तु दो प्रकार, एक विषय वस्तु, दूसरा अपने शरीर को बलवान करना। तो ये दो तरीके से उन्होंने, तीसरा स्टेप क्या हुआ कि दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। तो दूसरे पर निर्भर, एक तो राजा के ऊपर निर्भर होना पड़ा और साथ साथ में अश्विनी कुमार के ऊपर निर्भर होना पड़ा। तो जैसे ही व्यक्ति के हृदय में विषय भोग की कामना आती है उसी क्षण उसे दूसरे के ऊपर निर्भर होने की शुरुआत हो जाती है। और इतना ही नहीं, फिर उनका संगति ऐसे इन लोगों के बीच में पड़ने के कारण फिर शत्रु और मित्रता की शुरुआत हो गई। तो ऐसे चवन मुनि के जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति से चवन मुनि गुजरे। तो यहाँ पर मूलतः हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है कि श्री सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों में एक महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं और वह है सुचि स्मिता। ये सुचि स्मिता यहाँ पर श्री प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो यहाँ सुकन्या जो थी वो अपनी पतिव्रता की गर्वता से वो मुस्कुराने लगी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी श्लोक के तात्पर्य में इसी टीका को वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वो बड़ी गर्वित होकर हंसने लगी। यहां तक कि जो पतिव्रता जो इतने बलशाली है कि सुखदेव गोस्वामी के मन को भी आकर्षित किए, जो कि बड़े बड़े साधुओं के हृदय को भी आकर्षण करने वाला ये सबसे बड़ा व्रत है। और इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उनको कह रहे सुची यानी कि बहुत ही पवित्र। ऐसे बड़े बड़े पूर्वज में ऐसे कई इतिहास हैं जो कि माताएं जो कि अपने पतिव्रता का पालन करने के कारण बड़े बड़े देवतागण को भी उन्होंने आकर्षित कर दिया है। तो जैसे हम देखते हैं यमराज जो थे उनको भी उनके चित्त को भी आकर्षित करने वाले सावित्री, उन्होंने किस प्रकार अपने पतिव्रता के पालन से यमराज को कैसे उन्होंने उनके यमराज के चुंगल से उन्होंने अपने पति देव को रिहा किया। तो वर्णन आता है इनके विषय में जो कि धुमत सेन का एक पुत्र था जो कि सत्यवान। तो धुमत सेन बहुत बड़ा राजा था लेकिन उनके मंत्रियों ने उनको ठग कर उनके सारे राजपाट को छीन लिया और धुमत सेन अंधे हो गए और उनको उस राज्य से धक्के मार के निकाल दिया गया और वो धुमत सेन और सत्यवान जो कि एक जंगल में रहने को शुरू कर दिए। और दूसरे तरफ जो कि अश्वापति, इनको कोई संतान नहीं था, तो अश्वापति ने बहुत तपस्या किया जिस तपस्या से सावित्री जो थी वो प्रसन्न हो गई। तो सावित्री प्रसन्न हुई और पार्वती प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दी और पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पुत्री संतान प्राप्त होगी जिसका नाम सावित्री होगा। और फिर अश्वापति को एक संतान हुआ, एक कन्या हुई और वो कन्या जब अपने उस राज्य में जब भरण पोषण उनका हुआ, जब युवा अवस्था में आई, तब सावित्री जो थी अब उनको पति की तलाश थी। तब उनके पिता ने कहा तुम अपने पति को खुद ढूंढ लो। तो सावित्री रत्मर आरूढ़ होकर जंगल में निकली। तो जंगल में निकल कर गई तो वहां पर उन्होंने सत्यवान का दर्शन किया। तो सत्यवान को देखते ही उन्होंने मन ही मन में उनको पति के रूप में स्वीकार लिया और फिर वापस आकर उन्होंने अपने पिता को अश्वापति को कह दिया कि मैंने अपने पति को चुन लिया हूं। तब उन्होंने उसी समय वहां पर नारद मुनि भी थे तो नारद मुनि ने कहा कि इनका ठीक एक साल के बाद मृत्यु होने वाला है तो तुम उसको छोड़ दो। नारद मुनि ने धुमत सेन को जब कहा तो धुमत सेन ने उनके कन्या को कहा कि तुम इस विचार को छोड़ के किसी और को पति के रूप में स्वीकारो। तो यहां पर सावित्री कहने लगी नहीं, मैंने एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, मैं उसी को अपने पति के रूप में स्वीकारूंगी। और वैसे उन्होंने जिद कर ली और जैसे ही इस प्रकार जिद करने लगी तब नारद मुनि ने कहा ठीक है विवाह होने दो। और विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात इन्होंने तय किया अपने सारे राजपाट को छोड़कर वो उसके साथ जंगल में रहने लग गई सावित्री। तो जब उनके साथ जंगलों में रहती थी तब जब उन्होंने जो टाइम बताया था मृत्यु का, ये मृत्यु का टाइम सावित्री ने और किसी को नहीं बताया और ठीक 5 दिन पहले सावित्री उपवास करना शुरू कर दी और भयंकर उपवास की और बिना पानी के द्वारा। और जब जिस दिन उनका उनके पति का जो मृत्यु होने वाला है उसी दिन उन्होंने अपने पति के साथ पति को कहा आज तुम जंगल में लकड़ी काटने अकेले नहीं जाओगे, मुझे भी साथ में लेके जाओ। तो इन्होंने कहा आज तक तो तुमने इस प्रकार नहीं कहा, आज क्या बात है? बोला नहीं मुझे आपके साथ आना है। तब इन्होंने कहा ठीक है पिता से पूछ लो। तो उन्होंने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर और कई ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर वो उनके साथ निकल पड़ी। और जब निकल पड़ी तो जंगलों में गई तो वहां पर संध्या समय होता जा रहा था। तब उनके पति ने कहा कि अब जाना होगा, लेकिन मेरा सर बहुत भारी लग रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है, थोड़ा आराम करके निकलेंगे। तो उसी समय उन्होंने अपने पति देव को अपने गोद में लेटा दिया और केवल इंतजार कर रही थी कि अब क्या होगा। सूर्य अस्त हो ही रहा था और उसी समय कुछ क्षण के बाद उन्होंने देखा कि एक भयंकर विकराल स्वरूप वाला, जो कि एक भैंस में बैठकर एक व्यक्ति आ रहा है हाथ में रस्सी लेकर, और वो था यमराज। और उन्होंने उस रस्सी से सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को इस प्रकार उस रस्सी में बांध कर जब लेकर जा रहे थे तो सावित्री भी उनके पीछे लग गई। और जब पीछे चलने लग गई तो यमराज ने कहा, तुम जाओ वापस। बोला, नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। तो इन्होंने कहा, कहो। तो ये कहने लगी, जो वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में सदगति को प्राप्त करता है। तो यमराज ने कहा, बहुत सुंदर, मैं खुश हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए अपने पति को छोड़कर। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो ससुर है उनका जो आंख चला गया वो वापस आंख आ जाए। तो बोला, ठीक है, आ जाएगा, जाओ अभी। तो फिर चलने लगी, और जब फिर उनके साथ चलने लगी तो इन्होंने कहा, अभी जाओ। तो बोला, नहीं, मुझे कुछ कहना है। तो इन्होंने कहा, कहो क्या कहना है। तब ये कहने लगी कि जो व्यक्ति एक महात्माओं के साथ चार कदम चल लेता है तो उसके लिए इससे बड़ा भाग्य की बात क्या है, और वो उनका मित्र बन जाता है। तो यमराज ने कहा, बहुत सुंदर, मैं खुश हुआ हूं, अपने पति को छोड़ के मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो ससुर का जो राजपाट छूट चुका वापस मिल जाए। तो बोला, ठीक है, मिल जाएगा, अभी जाओ तुम। तो फिर चलने लगी। तो बोले, जाओ। बोला, नहीं, मुझे और कुछ कहना है। तो बोला, कहो। तो कहने लगी कि वो व्यक्ति कितना महान है जो व्यक्ति शत्रु और मित्र को समदृष्टि से देखता है, किसी में भेद नहीं करता। तो यमराज फिर प्रसन्न हो गया। तो यमराज ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए अपने पति को छोड़कर, मैं देने को तैयार हूं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पिता जो है उनको 100 संतान प्राप्त हो। तो बोला, ठीक है, मिल जाएगा, अभी तुम जाओ, मैंने बहुत कुछ दिया, अभी जाओ। बोला, फिर चलने लगी। बोला, जाओ। तो बोला, नहीं, मुझे और कुछ कहना है। बोले, तुम थक चुकी होगी। तो कहने लगी, नहीं, जहां मेरे पति है वहां पर मुझे थकावट कैसे होगा, मुझे और भी कुछ कहना है। तो बोला, कहो। तब इन्होंने कहा कि अब अंतिम कहना, अभी और कुछ मत कहना इसके बाद। तब इन्होंने कहा कि वो जो व्यक्ति कितना महान है जिनका हृदय एकदम शुद्ध है, और वो शुद्ध हृदय से जब कुछ कहता है तो लोगों के मन में सीधा उतर जाता है, वैसा व्यक्ति कितना महान है, वो पवित्र हृदय। तब यमराज ने कहा, बहुत अच्छा, मांगो, तुम्हारे पति को छोड़कर जो मांगना है मांगो, मैं देने को तैयार हूं। तब इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे 100 संतान की प्राप्ति हो मेरे पति के द्वारा, ऐसा वर दो। तो बोला, ठीक है, दिया, जाओ। तो बोले, कैसे जाऊं। तो बोले, आपने तो 100 पुत्र का वर दिया है, तो मैं पति के बगैर अपने पुत्र को, संतान को कैसे प्राप्त करूं, तो आपको मुझे पति को भी लौटाना पड़ेगा। तो यमराज अंत में हार कर, उनकी पतिव्रता की शक्ति के सामने यमराज भी हार कर उनको वापस दे दिया। और इस प्रकार सावित्री, जिन्होंने यमराज के चुंगल से अपने पति को रिहा किया अपनी पतिव्रता की शक्ति से, नरसिंह पुराण में बहुत सुंदर एक ये घटना आती है। देवश्रमा, ये एक बहुत अच्छा ब्रह्मचारी था। तो ये देवश्रमा जो थे, इन्होंने अपने माँ को छोड़कर, अपने माता पिता उनके गुजर गए थे, माँ विधवा हो चुकी थी, और उनको छोड़कर ये भिक्षा मांगकर जीने लग, अपने जीवन को बिता रहे थे। तो देवश्रमा जो थे, इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर भटक रहे थे। तो एक कश्यप का कश्यप की एक पत्नी थी जिनका नाम था सावित्री, ये सावित्री दूसरी है, तो वो पतिव्रता थी। तो देवश्रमा जो थे एक समय वो स्नान करने के लिए जब सरोवर में उतरे और टॉवेल को सुखाने रखे थे और उसी समय एक कौवा और बगला दोनों जन ने उस टॉवेल को उठाकर उस गमछा को उठाकर लेकर उड़ गए। और जब उड़ गए तो जब देवश्रमा का जब दृष्टि पड़ा उस पर तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो गुस्से से उस कौवे को और उस बगला को देखा और जैसे देखा तो वो जलकर राख हो गए दोनों भी। और तब वो एहसास करने लगा मेरे अंदर इतनी शक्ति है क्या, मैं केवल देखने मात्र से राख हो गया। तब उन्हें ऐसे अभिमान होने लग गया कि मैं बहुत दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिमान व्यक्ति बन गया। और इसी प्रकार वो अभिमान से वो जगह जगह पर भिक्षा मांगने के लिए गए। तो वो भिक्षा मांगते हुए वो आए कश्यप के घर पर जहां पर उनकी पत्नी सावित्री अपने पति की सेवा कर रही है। और उसी समय वो वहां पर भिक्षांडेही करके खड़ा था और यहां पर सावित्री जो थी अपने पति के पैर को धो रही थी शीतल जल से। तब उस समय उन्होंने उनको रुकने को कह दिया और जब रुकने का जब समय जब बढ़ता गया तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और जिस क्रोध से सावित्री के ऊपर दृष्टि दिए उन्होंने, तो सावित्री कहने लगी देवश्रमा चिंता मत करो मैं वो कौवा नहीं हूं। तुम जो सोच रहे हो कि अभी तुमने उस कौवा और बगला को राख कर दिया, मैं वो नहीं हूं, थोड़ा तुम्हें रुकना पड़ेगा तो ही मैं भिक्षा दूंगी। और सब उनका चरण वगैरह धोकर उन्होंने फिर जाकर उनको भिक्षा दिया और भिक्षा तो लेकर गए लेकिन मन ही मन में विचार कर रहे थे कि इनके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति आई कैसे। और तब वो कुछ समय के बाद फिर से लौट कर आए और उनके पास आकर उन्होंने प्रणाम इत्यादि कर कर कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप बताइए कि आपने वो दृश्य नहीं देखा तो भी उस दृश्य के विषय में कैसे ज्ञात है आपको। तब इन्होंने कहा केवल मेरे पतिव्रता की सेवा से। और तब इन्हें पता लगा कि वास्तविकता ब्रह्मचारी के व्रत से बड़ा व्रत यहां पर बताया वर्णन किया गया एक पतिव्रता का व्रत। तो किस प्रकार यहां पर एक पतिव्रता जो है जो सती जो है वो जो त्रिकालदर्शी बन जाती है केवल अपने पति को एक निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए। जैसे रेणुका जो थी जमत अग्नि की पत्नी थी, तो रेणुका जो थी वो हमेशा अपने पति के लिए यज्ञ हवन करने के लिए वो जल इत्यादि लेकर आती थी। तो रेणुका के पास एक घड़ियाल हुआ करता था। तो रेणुका वैसे पतिव्रता का बल इतना बलशाली था रेणुका का कि उस घड़ियाल से वो सरोवर से पानी भर के लाती थी। और उस घड़ियाल बहुत छोटा लेकिन उस घड़ियाल के अंदर कई कलसी पानी भर लेती थी और बड़े ही कम समय में वो सारा काम कर लेती थी। तो एक समय की बात थी कि जब रेणुका जब गई घड़ियाल लेकर पानी भरने, उसी समय इंद्र वहां पर उतरे थे और इंद्र का जो पीछे के जो बाल जो गोल्डन कलर का जो बाल जब यहां पर रेणुका ने जब देखा तो उसी समय रेणुका का मन उसी समय विचलित हुआ, कुछ क्षण के लिए उनका मन भटक गया। और हुआ क्या कि वो जब पानी भर रही थी तो सारा पानी सर करके बह गया, फिर से उठाए फिर से बह गया, काफी टाइम लग गया उन्हें वापस आने के लिए। तो जब वापस आई तो जमत अग्नि समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो जमत अग्नि ने अपने पहले पुत्र को कहा कि अपने माँ का शीश धर से अलग कर दो। तब वो तो कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं। दूसरे को कहा तुम करो, तो वो भी मना किया। तीसरे को कहा, वो भी मना किया। चौथे को कहा जो कि परशुराम थे, परशुराम मेरी बात सुनोगे? बोला हाँ पिता, जो आप बोलोगे मैं करूंगा, मैं धर्म का पालन करता हूं। अपने माँ का और अपने भाई के सहित सबका शीश धड़ से अलग कर दो। उन्होंने एक ही वार में सबका शीश अलग कर दिया, क्योंकि उसे पता था फ्यूचर मुझे क्या करना है। तो पिता खुश हो गए, तो पिता खुश होकर कहा मांगो वर, तुम्हें क्या चाहिए। तो परशुराम ने कहा मुझे आप कुछ वर देना चाहते थे, ये वर दो कि मेरे माँ का और भाई का सबका प्राण वापस आ जाए और उनको ये बात याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था, क्योंकि अगर वो याद भी रहेगा तो अभी शायद डर कर देखेंगे। तो वैसे परशुराम उन्होंने अपने वापस अपनी माँ का और भाई के प्राण को वापस ग्रहण किया पिता से वो वर मांगकर। तो जमदग्नि की जो पत्नी जो थी इस प्रकार पतिव्रता थी, और पतिव्रता में थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा उनका मन विचलित हुआ, उसी समय जमदग्नि समझ गए और इस तरह वो अपने कार्यों में चुक गए। तो वैसे ऐसे कई, जैसे हम यहाँ तक कि पतिव्रता की ऐसी शक्ति है कि यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती है। ऐसे जैसे गांधारी जो थी, गांधारी इस प्रकार पतिव्रता का पालन की थी कि वो अपने पतिव्रता की शक्ति से अपने पुत्र को आशीर्वाद देना चाहती थी। तो उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को कहा कि तुम वस्त्रहीन मेरे सामने आना। तो जब दुर्योधन गए थे सरोवर में आधी रात को स्नान कर जब आ रहे थे तो बिना कोई वस्त्र का, तो उसी समय कृष्ण ने देख लिया। तो कृष्ण ने कहा अरे ऐसे कहाँ जा रहे हो। बोले नहीं मेरी माँ ने बुलाए हैं। तो माँ ने बुलाया ऐसे। बोला हाँ। बोला वस्त्रहीन आना। बोला ठीक है वस्त्रहीन जाओ, लेकिन पत्ते लगाने में क्या खराबी है, ऐसे लज्जा नहीं आती है। अरे मूर्ख मत बनो, पत्ते लगा कर जाओ। तो उनकी बुद्धि चलने लग गए। बोला हाँ पत्ते लगाने के लिए तो मना नहीं किया है। तब उन्होंने कमर से लेकर जंगा तक उन्होंने पत्ते लगा कर गए। और जब गए तो उनकी माँ ने जैसे ही कहा कि तुम वस्त्रहीन हो, मैं वस्त्रहीन, तो दृष्टि जैसे ही गांधारी ने उन पर डाला तो पूरा शरीर उनका फौलाद हो गया। और ऐसे पतिव्रता की शक्ति से उन्होंने उनका शरीर ऐसे फौलाद बना दिया कि वो जो कि जब भीम जब उस पर गदा मारता था तो गदा रिबॉन्स आता था, तो वैसे शरीर उनका हो गया था। लेकिन जितने भाग में उन्होंने पत्ता पहना था वो भाग कच्चा रह गया। तो गांधारी कहने लगा अरे मूर्ख बालक, मैंने तुम्हें कहा था वस्त्र ही नाना, ये क्या कर दिया तुमने। तो इन्होंने कहा क्या करूं, रास्ते में कृष्ण मिल गया। तो कृष्ण ने उनका पूरा चाली बदल दिया। तो वैसे गांधारी को कृष्ण के प्रति इतना क्रोध आया, तब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जाओ मेरा श्राप है वसुदेव तुम पर कि तुम्हारा जितना भी वंशावली है सब नष्ट हो जाएगा। हालांकि श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि कृष्ण जो कि भगवान है उनको कोई नहीं श्राप दे सकता, लेकिन कृष्ण ने इस श्राप को ग्रहण कर ये शिक्षा दिया कि पतिव्रता कितना महान है। और वैसे माध्यम से भगवान कृष्ण को अपने वंशावली को वहीं पर ही खत्म करना था। और इस प्रकार कृष्ण ने गांधारी के श्राप को भी ग्रहण किया क्योंकि उनकी पतिव्रता की शक्ति से। तो वैसे जो पतिव्रता का जो पालन करता है उनके सारे जीवन के हर कार्य शुचि यानी कि पवित्र माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी शुचि स्मिता वो इस प्रकार उनको संबोधित कर रहे हैं कि कैसे उनका मुस्कान था ऐसा पवित्र मुस्कान जिनके अंदर रंस मात्र भी खोट नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ही स्वामी को निष्ठापूर्वक सेवा में लगता है जो कि भगवान के प्रतिनिधि है, तो उन्हें निर्भय रहना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए और वो बड़ा प्रसन्नचित रहता है। इसी प्रकार प्रसंग आता है रामायण में जब प्रभु रामचंद्र जी जब वन में जब विचरण कर रहे थे, तब उस समय एक मुनि जो कि सुतीक्ष्ण मुनि, सुतीक्ष्ण मुनि जो थे, इन्होंने उनका जब प्रभु रामचंद्र जी का जब दर्शन किया, तब वो क्या कहने लगे प्रभु रामचंद्र जी को दर्शन करते हुए, इस शब्द को कहा, अस अभिमान जानी घोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। वो कहने लगे कि मैं बहुत अभिमान के साथ कह रहा हूं कि एकमात्र मेरे पति है तो वो है रघुपति पति मोरे, वही एकमात्र मेरे स्वामी है और मैं ये अभिमान के साथ कह रहा हूं। तो जब कोई अगर एक ही पति को, यहां पर इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार सुकन्या जो थी चवन मुनि को ही अपने पति के रूप में स्वीकारी थी, जब पहले की अवस्था जब वृद्ध अवस्था थी तो उस समय उनका बहुत सारे चिड़चिड़ापन होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारे अपने पति के तरह तरह के स्वभावों को झेलते हुए, यानी कि उनका वृद्ध अवस्था होने के बाद भी उन्होंने वो सारी अवस्था को झेलते हुए उनके एक निष्ठापूर्वक सेवा की। अब जब यौवन हो गए तो बड़े गर्वित हो गई कि हाँ देखो अब मेरे पतिव्रता कितना उनके जो पति अब कितने सुंदर हो गए। और वैसे प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने शुचि स्मिता हंसते हुए ये कही कि ये जो बगल में जो आप जिनको देख रहे हो कोई और नहीं मेरे ही पति हैं। और इस प्रकार चवन मुनि को अपने पति के रूप में स्वीकार कर यहाँ पर सुकन्या बड़ी गर्वित हो रही है, यही बात इन श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो काफी श्लोक समझने को काफी प्रयास लगा मुझे पढ़ने के लिए, तो कुछ टूटी या कुछ गलत हुआ रहेगा तो क्षमा करिए गया। कुछ प्रश्न है, कुछ बात नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। सत्यवान को हाँ मैं जहाँ पर वो प्रसंग पढ़ रहा था तो उसमें ऐसे बताया गया है कि उनका सर भारी लग रहा था और वो सो गए उनके गोद में। प्रभु जी का प्रश्न है कि सत्यवान को सर्प ने डसा हो क्या सत्य है क्या, लेकिन उस प्रसंग में इसी प्रकार वर्णन किया गया है कि उनका सर भारी लग रहा था और वो सो गए, और सो गए तो उसी समय उनके प्राण हर लिए गए, सर्प डसा ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। यस प्रभु जी हाँ तो उनको पतिव्रत यहाँ पर तो वर्णन किया गया है कि पति अगर जीते जी प्रभु जी आपको प्रश्न समझ आया, उनका कहना है कि अगर कोई पति मर गया तो उस पत्नी ने अगर दूसरा विवाह किया तो उसको पतिव्रता माना जाएगा कि नहीं। अच्छा पहले युगों में संभव था लेकिन अभी के लिए नहीं है बड़ा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट तो पहला ये संभव था कि दूसरा विवाह, लेकिन अब द्रौपदी को अभी भी पतिव्रता माना जाता है ना, पांच पति को नहीं थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
Thank you.